اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا آتنا علما. بس ایک دفعہ آواز کو کنفرم کر دیں کہ آواز آ رہی ہے آپ کو. ہاں صاحب نے بڑی شکر دیا تو سنتے ہوئے کہ آ رہے ہیں. تو کل ہم نے خلاص تفسیر یہاں تک پڑھ لی تھی، پیج نمبر 124 کی تقریباً نصف تک. یہیں سے پڑھتے ہیں، ذرا جلدی جلدی پڑھیں گے، ان شاء اللہ ختم کرنا بھی ہے اس کو. تو فرماتے ہیں کہ اطاعت کی صورت میں دوہرے اجر اور ترک اطاعت پر دوہرے عذاب کی وجہ شرف زوجیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس پر یا نساء النبی دال ہے، کیونکہ اہل خصوصیت کی کوتاہی بھی اوروں کی کوتاہی سے اشد ہوتی ہے. اسی طرح ان کی اطاعت بھی اوروں کی اطاعت سے زیادہ مقبول ہوتی ہے. کیا ہے وہ ایک مقولہ عربی زبان کا نا، حسنات الابرار سیئات المقربین، کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، عام نیک لوگ، ابرار کا مطلب ہوتا ہے نیک لوگ، ٹھیک ہے، ابدال نہیں، ابرار، ابرار نیک لوگ. وہ حسنات الابرار، جو نیک لوگوں کے، یعنی جو عام نیک لوگوں کے لیے نیکیاں ہوتی ہیں، وہ سیئات المقربین، مقربین کے لیے وہ گناہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی ایک عام آدمی جب نماز پڑھ لیتا ہے، بے شک غفلت کی نماز کیوں نہ ہو، تو وہ اس کی نیکی ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی مقرب بندہ غفلت کی نماز پڑھے تو یہ اس کے لیے گناہ کے مترادف ہے، ٹھیک ہے. گناہ ہے نہیں، لیکن گناہ کے مترادف ہے کہ بھئی تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرب عطا کیا تھا، تمہیں تو بڑی حضوری اور حاضری والی، یعنی حضوری والی نماز پڑھنی چاہیے تھی، خوش یعنی کیا کہتے ہیں، خشیت والی نماز پڑھنی چاہیے تھی، رائٹ، خشوع و خضوع والی نماز پڑھنی چاہیے تھی. تو حسنات الابرار سیئات المقربین، ٹھیک ہے. تو یہی کانسیپٹ ہے یہاں پر بھی، بس وعدہ وعید دونوں میں وہ دوست دوسروں سے ممتاز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، اور خصوصاً مقام کلام میں یہ کہنا ممکن ہے کہ حضرات امہات المؤمنین سے خدمت اور اطاعت کا صدور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو راحت افزا زیادہ ہوگا، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راحت رسانی موجب زیادتی اجر ہو گئی. ٹھیک ہے، بی بی سے جب راحت ملتی ہے تو اس سے بڑی نعمت اس دنیا کی اور نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. دنیا کی نعمتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تین ہی ہوتی ہیں، ایک نیک بی بی، ایک اچھی خوشبو، اور نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دنیا سے تین ہی چیزیں پسند تھیں، نیک بی بی ان میں سے ایک تھی، تو اتنی بڑی نعمت ہوتی ہے یہ. تو فرمایا کہ اللہ حاضہ اس کی ضد میں سمجھنا چاہیے یہاں تک ازواج سے، یعنی الحاظہ یعنی اسی کے اوپر اس کی ضد بھی سمجھنی چاہیے، کہ ظاہر ہے اگر بیویاں جو ہیں وہ خدمت نہیں کریں گی اور بیویاں جو ہیں وہ راحت کا سبب نہیں بنیں گی تو اذیت بھی زیادہ ہوگی، ٹھیک ہے. جیسے کہ لباس، ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیویوں کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا، اگر لباس تکلیف دہ ہو جائے تو انسان تو مستقل تکلیف میں رہے گا نا، اگر دوسری چیزیں تکلیف دہ ہو جائیں تو پھر اس ان سے تو کبھی کبھی واسطہ پڑتا ہے، لیکن لباس تو ہر وقت قریب رہتا ہے. گرم لباس جب بھی کسی کو پہنا دیں گرمی کے زمانے میں تو وہ مستقل ہی کی تکلیف ہے، اسی طرح سب ٹھنڈا لباس پہنا دیں سردی کے زمانے میں تو وہ مستقل ہی کی تکلیف ہے. یہی معاملہ شوہر اور بیوی کا بھی ہوتا ہے. یہاں تک ازواج سے آپ کے حقوق کے متعلق خطاب تھا، آگے عام احکام کے متعلق زیادہ اہتمام کے لیے خطاب ہے کہ اے نبی کی بیویوں، محض اس بات پر مت بھول جانا کہ ہم نبی کی بیویاں ہیں اور اسی لیے عام عورتوں سے ممتاز ہیں. یہ نسبت اور شرف ہمارے لیے بس ہے، یعنی ہمارے لیے کنفرم ہے نسبت اور شرف. سو یہ وسوسہ مت کرنا، یہ بات صحیح ہے کہ تم معمولی عورتوں کی طرح نہیں ہو، بے شک ان سے ممتاز ہو مگر مطلقاً نہیں ہو، ٹھیک ہے. مطلق اور مقید کی بحث آ گئی یہاں پر بھی، کہ مطلقاً نہیں ہو بلکہ مقید ہو، قید کے ساتھ ہو، تو قید کا مطلب ہوتا ہے شرط. فرمائیے کہ بلکہ اس کے ساتھ ایک شرط بھی ہے، وہ یہ کہ اگر تم تقوی اختیار کرو تب تو واقعی اس نسبت کے سبب تم کو اوروں سے فضیلت حاصل ہے، حتیٰ کہ ثواب مضاعف ملے گا، ڈبل. اور اگر یہ شرط متحقق نہیں ہے تو یہی نسبت بالعکس دوہرے عذاب کا سبب بن جائے گی، یعنی یہ نسبت ہی تمہارے ڈبل عذاب کا سبب بن جائے گی. जब ये बात है कि निस्बत बिला तकवा हीच है, हेच है, हेच पढ़ते हैं इसको, तो तुमको अहकाम शरिया की पूरी पाबंदी करना चाहिए उमूमन, और उन अहकाम मस्कूरा, उन अहकाम मस्कूरा आयत आइंदा की खुसूसन, यानी जो आइंदा अहकाम आ रहे हैं आगे उनकी खुसूसन तुम्हें पाबंदी करनी चाहिए। और वो अहकाम क्या है? वो यह है कि तुम नामहरम मत से बोलने में जबकि बजरूरत बोलना पड़े, यानी बगैर जरूरत के, तो यानी गुफ्तगू सुनी और सुनाए भाई क्या हाल चाल है आपके, ठीक है ना, इसकी तो इजाजत है ही नहीं, ठीक है, आज का मौसम कैसा है, यानी जिसको कोई कोई बात ना करनी हो तो वो मौसम की बातें शुरू कर देते हैं, ठीक है, पाकिस्तानी लोग जो हैं वो सियासत की बातें शुरू कर देते हैं या क्रिकेट की बातें शुरू कर देते हैं, तो ये टॉपिक्स तो जरूर बात करने के हैं ही नहीं मर्दों और औरतों, गैर महरम मर्द और औरत के दरमियान, ठीक है, लेकिन जब जरूरत के तहत कोई बात भी करनी पड़े, जैसे कि फिकही मसला पूछना हो या कोई यानी एडमिनिस्ट्रेटिव मसला हो, घर का कोई जरूरी काम हो जो कि करने के लिए मर्द मौजूद ना हो, तो उस वक्त, या ये कि इल्म के जो इल्म नाफे होता है उसके हुसूल के लिए जो बातचीत करनी होती है, ये सारी जरूरत के मौके होते हैं, जब जरूरत बजरूरत बोलना पड़े तो नजाकत मत करो। इसका मतलब ये नहीं कि कसदन नजाकत मत करो, क्योंकि इसका बुरा होना तो बदीही है। बदीही का मतलब क्या होता है? अपेरेंट, यानी बिल्कुल क्लियर, कि जानबूझकर नाजुक बनना, ये तो यानी इसके लिए एक लफ्ज होता है लुचदार, ठीक है, लुचदार, तो जानबूझकर अपनी आवाज में ऐसा लुच पैदा करना, नजाकत पैदा करना, ये तो फासिका का तरीका है, फासिका, फाजिरा, ठीक है, लेकिन यहां पर उसकी बात हो ही नहीं रही, यहां तो बात हो रही है कि बगैर नियत के भी ऐसा ना हो, ठीक है, कि तुम्हारा कसदन नजाकत की तो बात ही नहीं हो रही, बल्कि बिना कसद भी नजाकत नहीं होनी चाहिए। तो दूसरी मुखातब यानी अजवाज मुतहरात में इसका एहतमाल नहीं, ठीक है, यानी कसदन नजाकत का तो एहतमाल भी नहीं था अजवाज मुतहरात से, ठीक है, कि वो नाउजुबिल्ला ऐसी कोई हरकत करेंगी। तो यहां पर मतलब क्या है? तो मतलब ये है कि जैसे औरतों के कलाम का फितरी अंदाज होता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनकी आवाज बनाई ही ऐसी है कि कलाम में नरमी और नजाकत तबीयी होती है, तबीयी तौर पर होती है, तो उस अंदाज को मत बरतो कि इससे ऐसे शख्स को तबअन ख्याल फासिद पैदा होने लगता है जिसके कल्ब में खराबी और बदी है, ठीक है, जिसके कल्ब के अंदर मर्ज है, फी कुलूब हिम मरद, ठीक है, क्या फरमाया कि फला तखबान बिल कौली फयतमी फी कल्ब ही मरदुन वकुल न कौलम मरूफा, ठीक है, तो यानी आम लोगों से ना जब तुम्हें कलाम करना हो, जिनको कि तुम्हें मालूम नहीं है कि जी ये शख्स जो है वो असलन कैसा है, तुम्हें उसका बैकग्राउंड नहीं पता, ठीक है, तो ऐसे शख्स से जो है ना तुम अपनी फितरी अल्फ आवाज में बात ना करो, ठीक है, तो इस शख्स को मत बरतो कि इससे ऐसे शख्स को तबअन ख्याल फासिद पैदा होने लगता है जिससे कल में खराबी और बदी है, बल्कि ऐसे मौके पर तकल्लुफ और एहतमाम से उस फितरी अंदाज को बदल कर गुफ्तगू करो, ठीक है, यानी तकल्लुफ कहते हैं तकलीफ के साथ, क्योंकि नेचुरल तरीके के खिलाफ अगर किसी को काम करना पड़े तो उसमें तकलीफ होती है, तो पुर तकल्लुफ और एहतमाम से उस अंदाज को बदल कर गुफ्तगू करो, और कायदा इफ्फत के मुआफिक बात करो, यानी कायदे इफ्फत जो कि अपनी इज्जत की हिफाजत का जो तरीका होता है तो उसके मुताबिक बात करो, यानी ऐसे अंदाज से जिसमें खुशकी और वेखापन, ये पंजाबी का के टर्म वैसे होती है लेकिन हजरत ने जाहिर पंजाबी यहाँ पे नहीं लिखी, लेकिन आई गेस ये उर्दू का एक प्रॉपर वर्ड भी है, वेखा, ठीक है, पन हो, कि ये हाफिज इफ्फत है और ये बद अखलाकी नहीं कहलाएगी, यानी खुशकी से बात करना और इस वखापन से बात करना ये बद अखलाकी नहीं कहलाएगी, बद अखलाकी तो वो है जिससे किसी के कल्ब को ईजा पहुंचे और तमाय फासिद के रोकने से ईजा लाजिम नहीं आती है, तमाय फासिद का रोकना जो है ये ईजा पहुंचाना नहीं कहलाता है, ठीक है, यानी किसी के अंदर फासिद तमा का पैदा हो जाना, उलमा के घर वालों पर बहुत लोग कमेंट करते हैं कि वो दीनदार हैं, कि वो दीनदार हैं नहीं है। इस कॉन्टेक्स्ट में हमें क्या सोच रखनी चाहिए कि वो दीनदार हैं या दीनदार नहीं है? वो आपसे क्या क्या समझा नहीं कि वो दीनदार हैं नहीं है? कमेंट करते हैं ना कि वो हकीकी तौर पर दीनदार है क्या? क्या मतलब, मैं समझा नहीं आप कहना क्या चाह रहे हैं, क्या सोच रखनी चाहिए? अब जरा फिर से लिखेंगे फिर देखते हैं। और ये बदअखलाकी नहीं है, बदअखलाकी वो है जिससे किसी के कल्ब को ईजा पहुंचे और तमे फासिद के रोकने से ईजा लाजम नहीं आती। इसमें तो बोलने के मुतालिक हुक्म फरमाया और आगे, यानी ये तो बोलने के मुतालिक हुक्म था, उनके दीन के बारे में कमेंट करते हैं। तो भाई इसमें एक बात बस इतनी सी है कि अगर तो आपको हकीकत हाल का पता नहीं है, ठीक है, यानी आपने खुद जो है वो कंफर्म नहीं किया कि अंदर क्या हाल है, ओके, खुद आपने अपनी निगाहों से सिर्फ देखा नहीं बल्कि आपने यानी आपको ऐसी कंफर्म खबरें पहुंच गई कि जिसको कि आप डिनाई कर ही नहीं सकते, बिल्कुल 100% जो है वो आपको कंफर्म पता लग गया कि हाँ भाई यहाँ पर यानी खिलाफे शरा काम हो रहा है, ठीक है। तो उस वक्त क्या करना चाहिए? उस वक्त जो है वो अगर वो आलिम यानी मशहूर है कि ये यानी दीन उलमाए हक के दरमियान इनका एक स्टेटस है, उलमाए हक जो है वो उनको उलमाए हक ही समझते हैं और वो मशहूर भी उलमाए हक में से ही हैं, ठीक है ना, यानी उनकी शोहरत है उलमाए हक के तौर पर, ठीक है। तो ऐसे मौके पर आपको जो है ना खामोशी इख्तियार करनी चाहिए, ठीक है। इसलिए खामोशी इख्तियार करनी चाहिए क्योंकि अगर आप उनको उनके बारे में बुरी बात करेंगे ना तो मामला सिर्फ उनकी हद तक नहीं रहेगा बल्कि मामला ये होगा कि जो अवामुन नास हैं उनका दीन के ऊपर से एतबार खत्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उनकी शोहरत जो है वो सिर्फ अवाम में अच्छी शोहरत नहीं है बल्कि उलमा भी उनकी अच्छी शोहरत है, ठीक है। तो इस वजह से ऐसे ऐसे मामले में खामोशी अख्तियार करनी चाहिए। ये मैं उस वक्त कह रहा हूँ जब कंफर्म हो जाए आपको कि हाँ यहाँ पर मामला खराब है, गड़बड़ है, तब खामोशी अख्तियार करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर कंफर्म नहीं है बल्कि लोगों से सुनने को मिल रहा है, ठीक है, या आपको गुमान हो गया है ऐसे ही बस कि हाँ भाई ये सही नहीं होगा और अगर ऐसे है तो इसका मतलब ये है कि ऐसे होना चाहिए, यानी अंदर भी कुछ खराबी होगी, ऊपर से अगर ऐसा लग रहा है तो अंदर से भी कुछ खराबी होगी, ये सब क्या है, इसको गुमान कहते हैं, ठीक है, जन कहते हैं इसको, ठीक है। तो अगर ये जन है या गुमान है, 100% आपको तहकीकी बात कंफर्म नहीं हो गई है, तब क्या करना चाहिए? तब जो है इस गुमान को जहन से झटक देना चाहिए, ठीक है, और उनके लिए कोई अच्छी तावील, कोई अच्छी एक्सप्लेनेशन, कोई जस्टिफिकेशन जहन में बना लेनी चाहिए, ठीक है, ताकि आपका ये गुमान जो है ना वो आपके जहन में जड़ ना पकड़ पाए, ठीक है। ये मैं उलमाए हक के बारे में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उलमाए हक के बारे में ये दो ही केसेस होते हैं, एक ये होता है कि आपको गुमान लग गया है, इधर उधर से सुना, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, या आपने थोड़ा सा देख लिया, ठीक है, थोड़ा सा मामला उनके बारे में देख लिया और उसकी बेसिस पर राई का पहाड़ बन गया आपके दिमाग के अंदर, ठीक है ना। तो ऐसे केस के अंदर उसको झटक देना चाहिए और उनके बारे में अच्छी तावीर जहन में बनानी चाहिए। दूसरा केस क्या है कि जबकि कंफर्म हो गया, ठीक है, लेकिन अभी भी उनकी शोहरत उलमा में भी अच्छी है और अवाम उन्नास में भी उनको उलमा हक में से समझा जाता है, तो फिर आपको तवक्को, आपको खामोशी इख्तियार करनी, ठीक है। और उसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है, और हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने ये वजह लिखी भी है कि अगर किसी आलिम के बुराई पर होने का तुम्हें पता लग भी जाए ना, फिर भी उसकी तशहीर मत करो अवाम में, इसलिए कि अवाम का फिर दीन पर से एतमाद हो जाएगा। ताकि आपके ऊपर जो है वो उनके बुरे असरात जो है वो ना पड़ जाए, लेकिन ये किस वक्त कंफर्म होने की सूरत में, ठीक है। उनका मामला भी और उनके घर वालों का, सबका एक ही, यानी एक ही हुक्म है। और ये भी कर सकते हैं कि ये भी हो सकता है कि भाई हो सकता है वो तो ना हो बिल्कुल भी इन्वॉल्व किसी गलत काम के अंदर, लेकिन घर वाले इन्वॉल्व है। तो ऐसे मौके पर ये याद रखें कि भाई नूह अलैहिस्सलाम की भी तो बीवी का मामला खराब था ना, बेटे का मामला खराब था, लूत अलैहिस्सलाम की भी तो बीवी का मामला खराब था ना। तो आलिम तो बहरहाल ये हजरत है, इनकी बीवी तो आलिमा नहीं है ना, या इनकी बीवी तो वैसे नहीं है ना जैसे कि ये खुद है, तो वो एक अलग शख्सियत है, एक अलग शख्सियत है। लेकिन जैसे कि यहाँ पर बात हो रही है कि बीवी के बारे में अगर बुरी बात करते हैं तो उसकी अजियत जो होती है वो उस शख्स को खुद भी पहुंचती है, ठीक है। तो इस वजह से इस बात का भी ख्याल रखें कि अलग अलग कंसिडर करने का मतलब ये नहीं है कि जी हाँ उनकी तो हम इज्जत करेंगे और इनको हम बेइज्जत करेंगे, तो कोई मसला नहीं है। नहीं, बिल्कुल मसला है, क्योंकि इनको बेइज्जत करने से उनकी भी अजियत का आप बाइस बनेंगे, ठीक है। अच्छा, आगे फरमाया कि बदअखलाकी तो ये हो गई बात। तो अच्छा, तो ये तो बोल यानी बोलने के बारे में हुक्म हो गया, ठीक है। अब आगे जो है पर्दे के मुतालिक इरशाद है, और अमर मुश्तरक दोनों में फकत इफ्फत ही है, यानी दोनों में इल्लत क्या है, इफ्फत वाली, यानी इज्जत इफ्फत वाली इल्लत है, बोलने के मामले में भी और पर्दे के मामले में भी। तो फरमाया कि तुम अपने घरों में करार से रहो, ठीक है, यानी साबित कायम तुम घरों के अंदर रहो। मुराद इससे ये है कि महज कपड़ा और लपेट कर पर्दा कर लेने पर किफायत मत करो कि जी बुरका पहन करके तो अब हम सब कुछ कर सकती हैं, ठीक है, जैसे कि कॉलेज भी जा सकती हैं, यूनिवर्सिटी भी जा सकती हैं, जॉब भी कर सकती हैं, क्योंकि बुरका पहना हुआ है ना तो बस सब कुछ कर सकती हैं, ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ऐसा नहीं है मामला, ठीक है। तो सिर्फ इस पर किफायत मत करो, बल्कि पर्दा इस तरीके से करो कि बदन मा लिबास नजर ना आए, यानी बदन ही नजर ना आए मा लिबास के भी, ठीक है। जैसे कि आजकल शुरफा में पर्दे का तरीका मुतआरफ है कि औरतें घरों से ही नहीं निकलती, ठीक है, यानी कम निकलती हैं, जरूरत के तहत निकलती है। और आगे जो हिजाब के अहकाम आ रहे हैं तो इसमें ये सारी तफसील जो है वो इंशाल्लाह हम दोबारा पढ़ेंगे, अगर चाहे पहले भी हम पढ़ चुके हैं। तो बगैर बिला जरूरत के औरतें घरों से निकलती ही नहीं, और अभी भी अलहमदुल्ला दुनिया में ऐसे जगह मौजूद हैं कि जहां पर आपको सड़कों पर औरतें नजर ही नहीं आती, ठीक है। सऊदी अरब के अंदर भी कुछ अर्से पहले तक ऐसा मामला था अक्सर जगहों पर, आज भी सऊदी अरब में भी सिर्फ रियाद और जद्दा ही को थोड़ी सऊदी अरब है, सऊदी अरब के तो और बे इंतहा दूसरे मकाम हैं, वहां पर जाकर के देखें तो अभी भी बहुत सारी चीजें वहां पर मेंटेन्ड हैं। तो औरतें घर से, पाकिस्तान में भी सुना है वजीरिस्तान और इस तरह की जो कुछ लाते हैं वहां पर, यानी दिन के वक्त औरत का बाहर निकलना ये मुमकिन ही नहीं है, नजर ही नहीं आती बिल्कुल, रात के वक्त निकलती है जब जरूरत के लिए भी निकलना पड़ता है अपने महरम के साथ, वो भी रात को निकलती है। हजरत ने अपने एक बयान में ये बात हमें बताई, वरना हमें तो नहीं पता, हम तो वहां नहीं गए। अलबत्ता मवाक़े जरूरत दूसरी दलील से मुस्तस्ना है, ठीक है, जरूरत के मौके पर मुस्तस्ना है, एक्सेप्शन एग्जेम्पशन आ जाती है। आगे इसी हुक्म की ताकीद के लिए इरशाद है कि कदीम जमाने जाहिलियत के दस्तूर के मुवाफिक मत फिरो, ठीक है। क्या मतलब कि आज के जमाने जाहिलियत के दस्तूर के मुवाफिक फिरो, ये तो नहीं है ना मतलब इसका। तो आगे इसको फिर उन्होंने क्लियर कर दिया है कि कदीम जमाने जाहिलियत के दस्तूर का दस्तूर क्या था कि जिसमें बेपर्दगी राइज थी गो बिला फहशी क्यों, ठीक है, बेपर्दगी बिला फहश यानी फोहश कहते हैं कि बेलिबासी वाली जो कैफियत होती है उसको फोहश कहते हैं, बेपर्दगी ये नहीं है, ठीक है, कि लिबास के बगैर जा रहे हैं तो उसको बेपर्दगी कहेंगे, नहीं, उसको तो बिला बेलिबासी कहेंगे, उसको तो फोहश कहेंगे, ठीक है। लेकिन बेपर्दगी भी जो है ना वो भी उस जमाने में राइज थी, ये नहीं कि हर औरत जो है वो अमेरिका यूरोप की तरह से फिरती थी, नहीं, बल्कि बस घर से बाहर निकल जाती थी बिला जरूरत, ठीक है। तो ये कदीम जमाने जाहिलियत के अंदर ये बेपर्दगी राइज थी गो बिला फहशी क्यों ना, और कदीम जाहिलियत से मुराद वो जाहिलियत है जो इस्लाम से पहले थी, और इसके मुकाबले में एक माँ बाद की जाहिलियत है, यानी माँ बाद अल इस्लाम की जाहिलियत है कि बाद तालीम और तबलीग अहकाम इस्लाम के इन पर अमल ना किया जाए, ठीक है। बस जो तबर्रुज बाद इस्लाम होगा वो जाहिलियत उखरा कहलाएगा। ठीक है, इसलिए तशबी में तख्सीस जाहिलियत उला की जाहिर है क्योंकि मुशब्बा व मुशब्बा बिही का तगायुर जरूरी है। ठीक है, क्योंकि फर्क क्या है इन दोनों के दरमियान? ठीक है, इस्लाम से पहले वाली जाहिलियत और इस्लाम के बाद वाली 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 जहालत। ठीक है, इनमें फर्क जो है ना वो सिर्फ क्या है, कबल और बाद का फर्क। ठीक है, शक्ल और सूरत का फर्क नहीं है, अंदाज का फर्क नहीं है। क्योंकि कोई ये समझेगा कि जी उस जमाने में जो लोग यानी तबर्रुज होता था, यानी इजहार होता था अपना, तो वो किसी खास अंदाज में होता, कोई ने कोई कोई डिफरेंट किस्म का फैशन होता था उस जमाने में। ठीक है, जमाने जाहिलियत का, या कोई खास किस्म की बेहयाई होती थी जो कि अब नहीं है। ऐसा नहीं है, जैसी पहली बेहयाई होती थी वैसी ही अब बेहयाई। ठीक है, जैसे पहले बेपर्दगी होती थी वैसे ही अब बेपर्दगी होती है, तो इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, फर्क क्या है? फर्क ये है कि पहले अहकाम इस्लाम नहीं थे, अब अहकाम इस्लाम है, ये फर्क है। ठीक है, ये चीज उन्होंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दी है कि इन दोनों के दरमियान क्या थी, कि बाद तालीम और तबलीग अहकाम इस्लाम। तो अब अगर एक अंदाज से देखा जाए तो पहले वाली जो बेपर्दगी और बेहयाई थी वो कम दर्जे की हुई, इसलिए कि उस वक्त जो है अहकाम थे ही नहीं। ठीक है ना, लेकिन जब अहकाम आ गए उनके बावजूद इंसान बेहयाई और बेपर्दगी करे तो ये तो डबल गुना वाली बात होगी ना, ये तो वही डबल स्टैंडर्ड वाली बात होगी ना, ये बल्कि डिफरेंट स्टैंडर्ड वाली बात होगी ना, कि अब आप इल्म के होने के बावजूद ये वाली हरकतें कर रहे हैं, पहले जो थे वो बेइल्मी के साथ ये हरकतें करते थे। ठीक है, तो अब तो ज्यादा शिद्दत हो गई ना गुनाह की। तो फरमाया कि मतलब ये कि जाहिलियत उखरा जारी करके जाहिलियत उला का इक्तदा मत करो, जिसके मिटाने को इस्लाम आया है, यहां तक अहकाम मुतअल्लिका इफ्फत के थे। ठीक है, तो अहकाम कैसे चल रहे हैं कि पहले बोलचाल के मुतालिक अहकाम आया, फिर उसके बाद पर्दे के मुतालिक हुक्म आया कि घर के अंदर करार रखो, लेकिन ये दोनों हुक्म जो थे वो इफ्फत से मुतालिक थे। ठीक है, यहां पर वो इफ्फत के दोनों हुक्म मुकम्मल हो गए, अब जो है वो इफ्फत के अलावा जो अहकाम अजवाज मुतहरात को दिए जा रहे हैं उनका जिक्र है। अब फरमाते हैं कि आगे दूसरे शराए का जिक्र है कि तुम नमाजों की पाबंदी रखो और जकात अगर निसाब के मालिक हो तो दिया करो, ये दोनों आजम शायर हैं इसलिए इनकी तख़सीस की गई है। सबसे ज्यादा बड़े फर्ज जो है वो नमाज और जकात है, और भी जितने अहकाम हैं और तुमको मालूम है सब में अल्लाह का और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना मानो, और हमने जो तुमको इन अहकाम के इस इल्तिजाम और इहतमाम का मुकल्लफ फरमाया है तो तुम्हारा ही नफा है, क्योंकि अल्लाह ताला को इन अहकाम के बताने से तशरीयन ये मंजूर है कि ऐ पैगंबर के घर वालों तुमसे मासियत तो और नाफरमानी की आलूदगी को दूर रखे और तुमको जाहिरन व बातिनन अकीदतन व अमलन व खुलुकन बिल्कुल पाक साफ रखे। ठीक है, तफहीरन था वयुतहिरकुम, और तुमको, हाँ, क्योंकि इल्म बिल अहकाम के सबब मुखालफत से जो कि मूजब आलूदगी और माने तकहीर है बचना मुमकिन है। यानी अगर तुम्हारे पास इल्म अहकाम मौजूद होगा तो तुम्हारे लिए फिर यानी उसकी मुखालफत से बचना आसान हो जाएगा। बेइल्मी के साथ मुखालफत से बचना मुश्किल होता है, इल्म के साथ बचना आसान होता है। तभी फकीहुन आलिमुन अशद्दु अल शैतानि मिन अल्फ आबिदिन फरमाया। और चूंकि इन अहकाम पर अमल वाजिब है और अमल मौकूफ है अहकाम के जानने और के याद रखने पर। ठीक है, यानी अहकाम तुम पर अमल कैसे करोगे जब तुम्हें मालूम होगा और तुम्हें मौके पर याद भी आ जाएंगे वो अहकाम, तभी तुम उनके ऊपर अमल कर सकते हो। इसलिए तुम इन आयात इलाहिया यानी कुरान को और इस इल्म अहकाम को याद रखो जिसका तुम्हारे घरों में चर्चा रहता है, क्योंकि इनके घरों के अंदर चर्चा कैसे रहता था कि आयात कुरानी नाजिल ही इन घरों के अंदर होती थी। ठीक है, बाहर भी नाजिल होती थी लेकिन घरों के अंदर ज्यादा नाजिल होती थी। ठीक है, और ये कि नबी अलैहिस्सलाम की फिर अजवाज जो थी इनकी तिलावतें भी किया करती थी बहुत ज्यादा। ठीक है, तो घर के अंदर बहुत ज्यादा चर्चा रहता था इन आयात का और इन आयात से मुतल अहकाम का। और ये भी पेश नजर रखो कि کہ بے شک اللہ تعالیٰ رازدان ہے کہ اعمال قلوب کو بھی جانتا ہے. ان اللہ کانا لطیفا خبیرا, ٹھیک ہے, یعنی لطیف ہے, بہت ہی چھپی ہوئی باتوں کو بھی جاننے والا ہے اور پورا خبردار ہے کہ پوشیدہ اعمال کو بھی جانتا ہے. اس لیے ظاہرا و باطنا سرا و علانیتا امتثال اوامر اور اجتناب نواہی کا اہتمام واجب ہے. ٹھیک ہے, تو اب ایک ایک آیت کو انہوں نے خلاصہ تفسیر کے اندر اس طریقے سے کھول کر بیان کر دیا. ٹھیک ہے, یہ تو ہو گیا ترجمہ اور ایک ایک آیت کے حساب سے تفسیر. اب معروف و مسائل کے اندر اوور آل جو مسئلے ہیں ان کو پھر حضرت شفیع مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ ڈسکرائب کرتے ہیں. جو خواتین دین کے کام کے لیے گھر سے نکلتی ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دین کے کام کے لیے گھر سے نکلتی ہیں تو دین کے کام, پہلی بات تو یہ دیکھنا پڑے گا نا کہ کون سا والا دین کا کام. ٹھیک ہے, وہ دین کا کام جو ہے وہ گھر سے نکلے بغیر نہیں ہو سکتا, یا وہ دین کا کام کرنے کے لیے جو گھر سے نکلتی ہیں تو پردے کا خیال کر کے نکلتی ہیں کہ نہیں نکلتی ہیں. ٹھیک ہے, تو ان ساری چیزوں کو دیکھ کر کے ہی حکم لگ سکتا ہے. تو اس وجہ سے یہ کوئی ایک عمومی بات تو نہیں ہے کہ جی دین کے کام کے لیے نکلتی ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے. ٹھیک ہے, تو معاملے کی نیت, نزاکت کے حساب سے, نوعیت کے حساب سے اور طریقے کے حساب سے بات ہوگی. یہ ویسے بہت تفصیل کے ساتھ آگے یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوں گی, کیونکہ دین کے کام میں عمومی طور پر اگر دیکھا جائے تو حج کرنا یہ بھی دین کا کام ہے, عمرہ کرنا یہ بھی دین کا کام ہے, اپنی بیوی نہیں بلکہ اپنے ماں باپ سے جا کر کے ملنا یہ بھی دین کا کام ہے, کیونکہ ماں باپ کی خیر و خیریت دیکھنے کے لیے صرف بیٹوں کے نہیں, کہ ابھی بیٹیوں نے تو اب شکل ہی نہیں دیکھنی شادی ہونے کے بعد ماں باپ کی. ٹھیک ہے, اپنے ماں باپ سے ملنا یہ بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے, جیسے کہ ہم نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے معاملے میں پڑھا تھا نا کہ کتنا اللہ تعالیٰ کی رضا ملتی ہے. ٹھیک ہے, تو شوہر کی رضامندی کے ساتھ ماں باپ کی خدمت کرنا تو یہ تو بیوی کے اوپر بھی لازم آ رہا ہے. بہرحال دین کے کام تو بہت ساری مختلف شکلوں کے ہیں نا, تبلیغی جماعت کا کام آ گیا اور مشائخ کے بیانات سننے کے لیے آ گیا, دین کا علم حاصل کرنے کے لیے مدرسے میں آ گیا, یہ سارے کام تو بڑی تفصیل ہے اس کا. اینی ویز, تو گھر کے باہر والے پردے کی ڈسکشن آگے آئے گی انشاءاللہ. معرفت مسائل, اس صورت کے مقاصد میں سے اہم مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا سے اور ہر ایسی چیز سے بچنے کی تاکید ہے جسے آپ سے تکلیف پہنچے, نیز آپ کی اطاعت اور رضا جوئی کے موقت احکام ہیں. غزوہ احزاب کا تفصیلی واقعہ جو اوپر گزرا ہے اس میں کفار و منافقین کی طرف سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذائیں پہنچیں ان کا ذکر اور اس کے ساتھ انجام کار موذی کفار و منافقین کا ذلیل و خوار ہونا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر موقع پر فتح مند اور کامیاب ہونا ذکر کیا گیا تھا, اور اس کے ساتھ ہی مومنین مخلصین جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم و اشارے پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا ان کی مدح و ثنا اور درجات آخرت کا بیان تھا. ٹھیک ہے, تو یہ اوور آل صورت جیسے شروع میں بھی پڑھا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا سے بچنا, ان کے متعلق صورت میں سارے مضامین آ رہے ہیں. تو بیویوں کا معاملہ بھی اسی کے کانٹیکسٹ میں ہی ہے. مذکور صدر آیات میں خاص ازواج مطہرات کو تعلیم ہے کہ وہ خصوصاً اس کا اہتمام کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے کسی قول و فعل سے ایذا نہ پہنچے, اور یہ جب ہی ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت میں لگ جائیں. یعنی نبی علیہ السلام کو ایذا سے بچانے کا مطلب کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی اطاعت. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام مردوں کی طرح تو نہیں تھے کہ جی ان کو بیوی کے ساتھ جو ہے وہ اچھے پرفضا مقام کے اوپر چہل قدمی کرنے سے اسے سکون ملتا تھا. ٹھیک ہے, یعنی وہ چیزیں جو تھیں وہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں. ٹھیک ہے نا, یہ نہیں تھا کہ بس چاہے جو چاہو کرو, جیسے کہ آج کے دور میں کیا ہوتا ہے کہ جی بیویوں کو جو ہے وہ سجا بنا کر کے باہر نکالتے ہیں. یعنی بہت سارے پاکستانی مسلمان, انڈین مسلمان شوہر ایسے ہیں کہ جن کو بیوی کا پردہ کیوں برا لگتا ہے, اس لیے برا لگتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو بطور ماڈل کے لے کر کے دنیا کے سامنے جانا چاہتے ہیں, دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو میں نے کتنی خوبصورت عورت سے شادی کی ہے, یا میری بیوی جو ہے وہ کتنی اچھی انگریزی بولتی ہے. رائٹ, بیوی کے ایکسنٹ لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ بھائی اچھی انگریزی والی بیوی سے میں نے شادی کری ہے, یا یہ کہ میری بیوی کی سرٹیفیکیشنز کتنی ہیں, کیسی کیسی تعلیم اس نے کہاں کہاں جا کر کے حاصل کری ہے. ٹھیک ہے, تو یہ مسلمانوں کا آج کے دور میں یہ حال ہے. ٹھیک ہے, تو نبی علیہ السلام یہ اس سے کیا شوہروں کو یعنی دل کا سکون مل رہا ہے نا, نعوذ باللہ نفس کا سکون مل رہا ہے اصل میں. ٹھیک ہے, لیکن نبی علیہ السلام کا معاملہ بالکل بھی ایسا نہیں تھا. ठीक है, नबी अलैहिस्सलाम का मामला यह था कि भाई अताआत की बात करो, अताआत करोगी तो सुकून मिलेगा, चाहे तुम खूबसूरत हो या ना हो, चाहे तुम जवान हो या बूढ़ी हो, चाहे तुम जो है वो यानी किसी अच्छे कबीले की सरदार की बेटी हो या किसी गरीब इंसान की बेटी हो, ठीक है, ये नबी अलैहिस्सलाम की सुकून के स्टैंडर्ड्स नहीं थे, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल की मुकम्मल अताअत, ये सुकून के स्टैंडर्ड्स नहीं, क्योंकि आपसे उसको सुकून इन्हीं चीजों से मिलता था। इस सिलसिले के चंद अहकाम अजवाज मुतहरात को खिताब करके बतलाए गए हैं। जाहिर है जो भी नबी अलैहिस्सलाम की जाहिरी बातनी सुन्नतों के ऊपर चलने की कोशिश करता है ना, तो उसके भी फिर स्टैंडर्ड्स बदल जाते हैं, ठीक है ना। अब आप देखें जो दीनदार लोग होते हैं तो उनको तो अपनी बीवी के अशात से, ठीक है, बीवी के मामला दूसरों को बताने से सुकून नहीं मिलता ना। जो दीनदार लोग होते हैं उनके स्टैंडर्ड्स बदल गए, अब उनको सुकून का मिलता है कि जब उनकी बीवी पर्दा कर रही होती है, जब उनकी बीवी का कोई तस्करा ही नहीं आता मर्दों के सामने, तो उनको सुकून मिल रहा होता है, तो स्टैंडर्ड्स बदल गए ना। तो नबी अलैहिस्सलाम की जो भी इत्तिबा करता है तो उसके भी स्टैंडर्ड बदल जाते हैं, उसके भी देखने का अंदाज बदल जाता है, सोचने का अंदाज बदल जाता है, खुशी और गमी की कॉजेज इल्लतें बदल जाती हैं उसकी भी। शुरू आयात में जो अजवाज मुतहरात को तलाक लेने का इख्तियार देना मजकूर है, इसका एक या चंद वाक्यात है जो अजवाज मुतहरात की तरफ से पेश आए, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंशा के खिलाफ थे, जिनसे बिला कस्दो इख्तियार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंची। यानी ये बीवियां बाकायदा इरादा करके नहीं, कि हम नबी, कुछ होती है ना औरतें कि जी मैं जरा उसको तकलीफ पहुंचाऊं ताकि ताकि उसको भी पता लगे कि मेरे साथ जो उसने किया था ना उसका क्या अंजाम होता है। तो अब ये जो औरत करेगी ये काम, ये कसद के साथ करेगी, इख्तियार के साथ ये काम करेगी ना, तकलीफ पहुंचाने वाला काम, ठीक है। लेकिन इन यानी अजवाज मुतहरात से जो ये मामला हो गया था, इन्होंने ऐसी कोई भी सोच अपने अंदर नहीं रखी थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाने का कसद हो इनके दिल में, लेकिन हो गया, ठीक है। अब इनको तो नहीं पता था, इनको इनमें गैब तो नहीं था ना कि जी हम ऐसा करेंगे तो ऐसे होगा और ऐसा करेंगे तो वैसा हो जाएगा, तो बस हो गया इनसे काम जिसका इनको अंदाजा ही नहीं था कि इससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचेगी। उससे पहले ऐसे वाकयात नहीं हुए थे, अगर होते और इनके सामने से गुजरे होते तो फिर उनको पता होता, लेकिन ऐसा मामला पहले कभी पेश ही नहीं आया था। इन वाकयात में से एक वाकया वो है जो सही मुस्लिम वगैरह में हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु की रिवायत से मुफस्सल आया है। इसमें मजकूर है कि अजवाज मुतहरात रज़ियल्लाहु अन्हुन्ना ने जमा होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका मुतालबा किया कि उनका नान नफका बढ़ाया जाए। क्या नान नफका बढ़ाना ये कोई हराम मुतालबा तो नहीं है? तफसीर बहर मुहीत में अबू हयान ने इसकी तशरीह ये बयान की है कि गजवाए अहजाब के बाद बनू नुज़ैर, फिर बनू कुरैज़ा की फतूहात और अम्वाल गनीमत की तकसीम ने आम मुसलमानों में एक गुना यानी एक तरह से खुशहाली पैदा कर दी थी। अजवाज मुतहरात रजी अल्लाह ताला अन्हुन्ना को इस वक्त ये ख्याल हुआ कि इन अम्वाल गनीमत में से हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपना हिस्सा रखा होगा, इसलिए उन्होंने जमा होकर अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कसरा व कैसर की बीवियां तरह तरह के जेवरात और कीमती लिबासों में मलबूस हैं और इनकी खिदमत के लिए कनीजें हैं और हमारा हाल फक्र व फाके का आप देखते हैं, इसलिए अब कुछ तवस्सो से काम लिया जाए, ठीक है। यानी ये जो नान नफ्ते में बढ़ाई का बढ़ाने का जो मुतालबा है ना, ये इन्होंने इस सूरत में नहीं किया था जब नबी अलैहि सलाम के पास कुछ होता नहीं था, ठीक है। उस वक्त अगर करती तो वो नाजायज होता, लेकिन अब तो नबी अलैहिस्सलाम के पास ये सारी चीजें आ रही थी ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही तो आगे तकसीम फरमाते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में आएंगी तो आगे तकसीम फरमाएंगे, तो अब तो तवस्सुह हो चुकी थी, अब मुतालबा किया, ये मुतालबा अब जो है वो इस मौके पर नाजायज नहीं था, ठीक है। अब ये जो उन्होंने बात करी कैसर व कसरा वाली, तो भाई ये तो एक अंदाज होता है कि जब कोई इंसान अपनी बात पेश करता है ना, आगे कन्विंस करना चाहते हैं तो कन्विंस करने के लिए कोई दलीलें भी लेकर के आता है, ठीक है भाई, वरना आप बगैर दलील के भी बात कर सकते हैं, लेकिन इंसान चाहता है कि भाई मेरी बात जो है ना वो मान ली जाए, तो वो चाहता है कि दलील भी पेश करे अपनी बात के लिए। तो इन्होंने दलील के तौर पर दूसरे यानी जो जो दुनिया दुनिया के वो थे, यानी जिनके तहत लोग होते हैं, लोगों पर हुक्मरानी करने वाले लोग, तो उनकी मिसालें पेश करें, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी अब यही मामला हो चुका था ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ जो है वो नमाज के इमाम तो नहीं थे ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ जो है वो दीनी इबादतों के बताने वाले तो नहीं थे ना, बल्कि दुनियावी उमूर चलाने वाले भी तो थे ना, हाकिम भी तो थे ना, अमीर भी तो थे ना। तो इसी वजह से इन्होंने अमीर और हाकिम वाली मिसाल पेश कर दी। ठीक है, इसका मतलब नाउज बिल्ला ये बिल्कुल भी नहीं था कि गोया के नबी अलैहि सलाम को उनसे कंपेयर कर रही थी। ठीक है कि भाई क्योंकि वो ऐसी जिंदगी गुजारते हैं तो हमें भी ऐसी जिंदगी गुजारनी चाहिए, लेकिन दलील के तौर पर उन्होंने एक मिसाल बयान कर दी क्योंकि वो भी हाकिम थे, नबी अलैहिस्सलाम भी हाकिम थे। ठीक है, तो ये एक तभी सी बात, तभी चीज है, नेचुरल सी बात है, इंसान इस तरीके से बात करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अजवाज मुतहरात की तरफ से ये मुतालबा सुना कि उनके साथ वो मामला किया जाए जो बादशाहों और दुनियादारों में होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इससे बहुत रंज हुआ कि उन्होंने बैत नबूवत की कदर ना पहचानी, क्योंकि नबी अलैहि सलाम जो थे वो ना सिर्फ ये कि यानी एक मुशाहिदाती जिंदगी भी गुजारे थे ना, कि आप सल्लम ने जो जैसी अपनी जिंदगी पहले गुजारी थी उसके इनाम में अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम को मुशाहिदा अता फरमाया था। ठीक है ना, यानी ये नहीं कह सकते कि नबी अलैहिस्सलाम को तो मुशाहिदा मिल गया था तो अब तो जाहिर है उन्होंने ऐसे सोचना था, दूसरे लोगों को तो मुशाहिदा नहीं मिला था तो वो कैसे सोचते। भाई नबी अलैहिस्सलाम को जो मुशाहिदा मिला था ना, ठीक है, मेराज का मुशाहिदा, राइट, जन्नत और जहन्नुम को देखने का मुशाहिदा, ठीक है, तो वो तो बड़ी शदीद किस्म की तकलीफें झेलने के बाद मिला था, राइट, बेहतरीन इंसान बनने के मुजाहरे के बाद मिला था ना। तो ये नहीं कह सकते कि जी उनको नबी अलैहिस्सलाम को तो मिल गया तो जाहिर है उन्होंने तो फिर हर वक्त आखरती के बारे में सोचते रहना था। ठीक है, ऐसा नहीं है, बल्कि मेहनतों के नतीजे में ये चीजें मिलती हैं। 3 साल तक, अभी पिछली क्लासों में बात हुई थी ना कि अपनी पूरी फैमिली के साथ 3 साल का लंबा कोई छोटा तो नहीं होता कि एक घाटी के अंदर जिंदगी गुजारे बंदा। ठीक है, उसके अलावा जिल्लत, रुसवाई, अपने घर वालों की दुश्मनी, अपने सगे चचा की इतनी शदीद जो है वो दुश्मनी बर्दाश्त करे इंसान, ये सारी चीजें जो होती हैं बड़ी, यानी बहुत बड़ी कुर्बानियां थी। उसके बाद आपसे मुशाहिदा मिला, जब मुशाहिदा मिल गया तो भाई नबी अलैहिस्सलाम का तो रोजो शब जो है वो तो यानी फना फिल्ला, ठीक है, बल्कि फना फिल्ला से भी आगे बढ़ करके जो एक दर्जा होता है कि फना फिल्ला के बाद फिर इंसान जब वापस पलटता है दुनिया के अंदर तो बका फिल अशिया वाली जिंदगी गुजार रहा होता है, लेकिन उसका दिल पक्का अल्लाह ताला के साथ नत्थी हो चुका होता है। ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये वाली जिंदगी गुजार रहे थे। ठीक है, तो अब बीवियों से ऐसी बात सुन लेने से तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुखी होना था ना। ठीक है, लेकिन बीवियों को तो नहीं पता था कि भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये चीज जो है वो ऐसी जा करके लग गई। ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इससे बहुत रंज पहुंचा और इसकी वजह जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये कैफियत थी, बका बिल्लाह वाली कैफियत। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों ने कुछ मुराकबा मजलिस के अंदर जो हम किताब पढ़ रहे हैं रुचि की तो उसको सुना होगा या खुद भी पढ़ा होगा, तो आपको ये टर्म समझ में आती होगी, बका बिल्ला का मतलब क्या होता है। तो आगे फरमाया कि अजवाज मुतहरात को ख्याल नहीं था कि इससे आप सदस्यों को ईजा पहुंचेगी, आम मुसलमानों में माली वसत देखकर अपने लिए भी वसत का ख्याल दिल में आ गया था। अबू हयान ने फरमाया कि इस वाकये को गज़वाए अहज़ाब के वाकये के बाद बयान करने से भी इसकी तायीद होती है कि अजवाज का ये मुतालबा ही तखीरे तलाक का सबब बना, यानी अल्लाह ताला ने जो इख्तियार दिया कि तुम लोग तलाक को इख्तियार कर सकती हो तो ये इख्तियार यानी इसी वजह से बना था, इसी वजह से दिया गया था। बाज़ रिवायत हदीस में ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा के घर में शहद पीने का वाकया जो आगे सूरह तहरीम में आगे मुफसल आएगा, इसमें अजवाज की बाहिमी गैरत के सबब जो सूरत पेश आई वो इस तखीरे तलाक की सबब बनी। ठीक है, तो कुछ रिवायात से ऐसा भी लगता है कि वो वाला जो शहद वाला मामला था ना कि ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहद पेश किया था। ठीक है, तो जब आप सरासर वहां से हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास आए तो हजरत हफ्जा रज़ियल्लाहु अन्हा ने भी शायद वहां मौजूद थी, या हजरत हफ्जा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कुछ अपनी तरफ से मशवरा दे दिया आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा को कि भाई आप सरासर को ये कह दिया जाए कि वो जो आपने लगता है कोई ऐसी चीज खाई खाई है या पी है कि जिसकी वजह से आपके मुंह से बदबू आ रही है। ठीक है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बारे में इंतहाई सेंसिटिव थे कि मुंह से बदबू नहीं आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो है वो फरिश्ते आया करते थे और फरिश्ते जो है वो बदबू से रिपेल होते हैं, दूर भागते हैं। इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मिसवाक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया करते थे। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि मुंह से बदबू आ रही है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सोचा कि भाई किस वजह से बदबू आ रही होगी। तो फिर वह यहाँ भी शहद खाया था अभी, तो शहद शहद की वजह से बदबू आ रही थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त ये फरमा दिया कि अब मैं शहद नहीं खाऊंगा। फिर वो सूरह तहरीम की आयात नाजिल हो गई, ठीक है, कि आप जो है वो अपनी बीवियों को खुश करने के लिए किसी हलाल चीज को हराम कर देते हैं, क्योंकि शहद तो अल्लाह ताला की पसंदीदा चीज है, ठीक है। जन्नत के अंदर शहद की नहरें अल्लाह ताला ने ऐसे तो नहीं बहा दी है ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी चीज को हराम कैसे कर लिया अपने ऊपर। अल्लाह ताला ने तो इस चीज को इग्नोर नहीं करना था, ठीक है। लेकिन इस मामले में भी तलाक वाला वाला मामला पेश आया था, तखीर तलाक वाला। बहरहाल तो अब ये डिस्कशन हो रही है कि ये जो आयात हैं ये किस वजह से, यानी ये जो यानी नान और नफ़े में वसअत का मुतालबा, वो इन आयात का सबब बना या वो शहद वाला वाकया इन आयात का शान नुज़ूल बना, ठीक है। तो वो फरमा रहे हैं कि अगर ये दोनों चीजें करीबी जमाने में पेश आई हों तो ये भी बईद नहीं कि दोनों ही सबब हों, लेकिन आयत तखीर के अल्फाज से ज्यादा ताईद इसी की होती है कि अजवाज मुतहरात की तरफ से कोई माली मुतालबा इसका सबब बना है, यानी शहद वाला मसला इसका सबब नहीं बना बल्कि माली मुतालबा इसका सबब बना है। क्योंकि इस आयत में फरमाया है इन कुन्तुन्ना तो रिदनल हयात दुनिया वजीनत, ठीक है, तो अल्फाज से बात जाहिर होती है। इस आयत ने सब अजवाज मुतहरात को इख्तियार दे दिया कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदा हालत यानी मुआशी उसरत और तंगी के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में रहना कबूल करें या फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तलाक के साथ आज़ाद हो जाएं। पहली सूरत में उन तमाम औरतों की निस्बत से बहुत ज्यादा अजर अजीम और आखरत के खास दर्जात आलिया होंगे, और दूसरी सूरत यानी तलाक लेने में भी उनको दुनिया के लोगों की तरह किसी तरफी तकलीफ की नौबत नहीं आएगी, बल्कि सुन्नत के मुताबिक कपड़ों का जोड़ा वगैरह देकर इज्जत के साथ रुखसत किया जाएगा। तिर्मिज़ी ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत किया है कि जब ये आयत तख़ीर नाज़िल हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके इजहार और ऐलान की इब्तिदा मुझसे फरमाई और आयत सुनाने से पहले फरमाया कि मैं तुमसे एक बात कहने वाला हूँ, मगर तुम उसके जवाब में जल्दी ना करना बल्कि अपने वालिदैन से मशवरा करके जवाब देना। आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि ये मुझ पर खास इनायत थी कि मुझे वालिदैन से मशवरे के बगैर इजहार राय से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकीन था कि मेरे वालिदैन मुझे कभी ये राय नहीं देंगे कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुफारकत इख्तियार कर लूं। मैंने जब ये आयत सुनी तो फौरन अर्ज किया कि क्या मैं इस मामले में वालिदैन से मशवरा लेने जाऊं, मैं तो अल्लाह को और उसके रसूल को और दार आखरत को इख्तियार करती हूँ, यानी मशवरा लिए बगैर ही मैं आपको इख्तियार करती हूँ, मुझे उस मशवरे की भी जरूरत नहीं है, मैं तो अल्लाह को और उसके रसूल को और दार आखरत को इख्तियार करती हूँ। फिर मेरे बाद सब अजवाज मुतहरात को कुरान का यह हुक्म सुनाया गया, सब ने वही कहा जो मैंने अव्वल कहा था, ठीक है। आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसी तवज्जुहात का मरकज भी थी, और आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा को ऑब्वियसली नेचुरली इस पर नाज भी बहुत था, ठीक है, कि भाई जब कोई ऐसा सेंटर ऑफ फोकस बन जाए दूसरों के मुकाबले में तो फिर एक तबीयी तौर पर उसके अंदर भी एक कैफियत आ जाती है, और वो दूसरों को बताना भी चाहता है कि हाँ जी मेरे साथ जो है ये मामला जरा खास हुआ था, ठीक है। जब कोई खास शख्सियत उसके साथ ये मामला करती है तो फिर वो लोगों को बताता भी है, ठीक है। तो ये भी एक तबीयी चीज़ है, इसके अंदर तकब्बुर और अनानियत और उजब और ये सारी चीज़ें वाली रूहानी बीमारियाँ नहीं है, क्योंकि रूहानी बीमारियाँ तो यानी एक खास वजह से पैदा होती, ठीक है, ख्वाहिशात की पैरवी की वजह से पैदा होती हैं, लेकिन जिसने ख्वाहिशात की पैरवी ना करी हो तो उसके अंदर रूहानी बीमारियां नहीं पैदा हो जाती, ऐसे ही नहीं पैदा हो जाती खाम खाम, ठीक है। तो किसी ने भाई तवज्जो आपको दी है तो इसको जो है ना तहदीस नेमत भी कहते हैं, तहदीस नेमत यानी नेमत का बयान करना, और ये तहदीस नेमत जो है ये तो एक्चुअली अल्लाह ताला का हुक्म भी है, हद्दिस व अम्मा बिनेमत का क्या है, जहां तक अल्लाह ताला की नेमतों का ताल्लुक है तुम्हारे ऊपर तो उसको बयान करो, ठीक है, सूरह आलम नशरा की जो आयत है, ठीक है। तो तहदीस नेमत के तौर पर हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है वो फिर इस खुसूसी तवज्जो को बयान भी करती थी कि जी मैंने अव्वलन ये काम किया और नबी अलैहि सलाम ने मेरे साथ ऐसा मामला किया और ऐसा हुआ। और आखिरी जो जिसके यानी मेरे मुझे ये खसूसियत हासिल है कि जब नबी अलैहि सलाम दुनिया से पर्दा फरमा गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक जो था वो मेरी गोद में था, ठीक है, और मेरा लुआब दहन जो था वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह में गया, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा सिद्दीका को कहा था कि मिसवाक की लकड़ी को जो है वो नरम करके फिर मुझे दो, तो जाहिर है जब नरम करेंगी तो मुंह का थूक जो है उसके अंदर शामिल होगा ना। ये सारी चीजें फिर आयशा सिद्दीका जो है वो बयान करती थी, ठीक है, उम्मत की माँ भी थी और उम्मत की मुअल्लिमा भी थी, सिखाने वाली भी थी। मैं तो अल्लाह को और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और दार आखिरत को इख्तियार करती हूँ, फिर मेरे बाद सब अजवाज मुतहरात को कुरान का यह हुक्म सुनाया गया, सबने वही कहा जो मैंने अव्वलन कहा था। किसी ने भी यानी ये नहीं कि अब दूसरों के बारे में ना उस बदला कोई बुराई वाली बात करी, बल्कि सबको क्रेडिट दे दिया कि सबने वही कहा जो मैंने कहा, ठीक है। किसी ने भी दुनिया की फराखी को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत के मुकाबले में कबूल नहीं किया। फायदा यानी इख्तियार तलाक की दो सूरतें होती हैं, एक ये कि तलाक का इख्तियार औरत के सुपुर्द कर दिया जाए, अगर वो चाहे तो खुद अपने नफ्स को तलाक कर दे देकर आजाद हो जाए। दूसरे ये कि तलाक शौहर ही के हाथ में रहे कि अगर औरत चाहे तो वो तलाक दे दे, ठीक है। तो ये इख्तियार तलाक जो है इसकी दो सूरतें होता है, या तो आप कामिलन उसको दे दें, ठीक है, तो जो चाहे कर, तो अगर औरत ने दे दिया तो अब वो जब चाहे अपने आप को तलाक दे सकती है, ठीक है, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए क्योंकि शरीयत ने तलाक का इख्तियार औरत को दिया नहीं है, ठीक है। जब यानी शरीयत ने नहीं दिया तो किसी वजह से नहीं दिया ना, तो मर्द जो है ना वो भी फिर जज्बात में आकर के अगर वो तलाक का इख्तियार औरत को दे देना तो ऐसा समझे कि गोया के हो ही गई तलाक, बिकॉज नेक्स्ट टाइम जब लड़ाई झगड़ा होगा ना या औरत को गुस्सा आएगा ना तो अब वो नहीं रुक सकेगी, वो उसने तलाक लेकर के ही छोड़ना है, ठीक है। तो इस वजह से जो मुफ्ती आजाद होते हैं ना जिनके पास लोग तलाक के मसाइल लेकर के आते हैं, तो वो फिर तजुर्बे के बाद यही बात कहते हैं कि वाकई शरीयत ने जो तलाक का इख्तियार नहीं दिया ना औरत को, उसमें इतनी हिकमत है कि अगर होता उसके पास तलाक का इख्तियार तो वो रोजाना अपने आप को 100 तलाकें दिलवा चुकी होती, दे चुकी होती, बल्कि दिलवा तो वो वैसे भी रही होती है लेकिन दे चुकी होती है अपने आप को 100 तलाकें, या मर्द को 100 तलाकें दे चुकी होती है। बहरहाल कुछ मर्द भी अनफॉर्चुनेटली जाहिर है हालात ऐसे हो चुके हैं कि मर्द जो है वो अपने मुकाम से तो गिर करके औरत के मुकाम से भी नीचे चले गए, और औरत जो है जाहिर है उससे भी ज्यादा नीचे चली गई है, लेकिन मर्द इस मुकाम पहुंच गए हैं कि बहुत सारे मर्द मर्दों के बारे में आप सुनने को मिलता है कि जो कि रोजाना 100 तलाकें देते हैं, या वो अपनी जिंदगी में 100 तलाकें अपनी बीवी को दे चुके हैं और बीवी को फिर भी साथ रखे हुए हैं। ऐसे मामला भी बेहद है, और मतलब रियाज में भी ऐसे बड़े केसेस सुनाए के मौजूद हैं। आयत मस्कुरा में बाज मुफस्सरीन ने पहली सूरत को और बाज ने दूसरी को इख्तियार किया है। सैयदी हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह ने बयान कुरान फरमाया कि सही बात यह है कि आयत के अल्फाज में दोनों इहतमाल हैं, जब तक किसी सरीह नस से एक की तयीन ना हो जाए अपनी तरफ से किसी सूरत को मुतय्यन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस है, ये काफी तफसीली जाहिर है। चाह रहा था कि मैं अभी यहीं पर बोलते हैं, एक्चुअली ये मुकम्मल कर लेते हैं ये दो पैराग्राफ्स वाले। तो मसला इस आयत से मालूम है कि जब जोजैन की तबीयतों में मुनासिबत ना हो तो मुस्तहब ये है कि बीवी को इख्तियार दिया जाए कि शौहर की मौजूदा हालत पर कनात करके साथ रहना चाहे तो रहे, वरना सुन्नत के मुताबिक तलाक देकर कपड़े के जोड़े देकर इज्जत के साथ रुख्सत कर दिया जाए। तो अजियत दे करके बांध करके रखना और अजियत में सारी जिंदगी मुब्तला रखना ये खिलाफ है सुन्नत है, ये मकरूह है, ठीक है। तो मुस्तहब यह है कि अलग ही हो जाया जाए। आयत मस्कुरा से इस मामले का इस्तेहबाब ही साबित किया जा सकता है, वजूब पर कोई दलील नहीं है, ठीक है, वाजिब होने पर कोई दलील नहीं है, इस वजह से इस्तेहबाब ही कहेंगे। बाज़ आइम्मा फुकहा ने इस आयत से वजूब पर इस्तदलाल किया है और इसी बिना पर ऐसे मुफलिस आदमी की बीवी को अदालत की तरफ से तलाक देने का हक दिया है जो बीवी को नफका देने पर कादिल नहीं है। इस मसले की पूरी तफसील अहकाम कुरान हिज्बे खामिस में ऐसी आयत के तहत तहत में बज़ुबान अरबी मजकूर है, ठीक है। कोई सवाल? अगर ऐसे रिश्तेदार से कुछ बात करनी पड़े जो बड़े हों तो उनसे कैसे बात की जाए, सख्ती से बात करें तो बुरा मना जाएंगे। हाँ, बुरा माना जाएगा जी। ये बिल्कुल सही आपने सवाल किया। एक्चुअली मेरा इरादा था कि इसको मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन वो जहन से निकल गया बात के दौरान, कि जो ऐसे अफराद होते हैं ना, यानी जिनमें एक एक्चुअली आपके मशायख भी आ जाते हैं, ठीक है, शेख जैसे जिसके साथ इस्लाही ताल्लुक बनाया है, तो अब उसके साथ भी जो है वो खुशकी और रूखापन या वेखापन, जो ये रूखापन है एक्चुअली, यहाँ पे वेखापन नहीं था, वेखा तो कुछ और ही चीज होती है, रूखापन यहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है। तो इस तरीके से उन ऐसे लोगों के साथ बात करना कि जिनसे आपने इस्लाही ताल्लुक बनाया है, तो भाई अगर उनके दिल में मर्ज है तो इस्लाही ताल्लुक बनाया क्यों है, नहीं बनाना चाहिए था ना 100% कि उनके आपको एहतमाल है कि उनके दिल में मर्ज है, ठीक है, तो फिर तो भाई इस्लाही ताल्लुक नहीं बनाया चाहिए था। तो उनके साथ जो है ना वो अदब से बात करना, और अदब से बात करने का मतलब ये होता है कि खास तौर पर लुचदार करके आवाज नहीं बनाना, वो तो बिल्कुल ही यानी बेहयाई वाली बात हो गई, लेकिन एक नॉर्मल तरीके से बात करना, ठीक है, तो उसमें खुशकी पैदा करने की जरूरत नहीं होती है। और दूसरा ये कि कोई ऐसी शख्सियत है, चाहे आपके घर की शख्सियत हो, या कोई दीनी शख्सियत हो, तकवा वाली शख्सियत हो, ठीक है, जो कि बेशक आपके अपने शेख ना हो, लेकिन जिनके बारे में आपको ऐसा एहतमाल नहीं है कि जी उनके दिल में ऐसा मसला होगा, तो उनके साथ भी एक नॉर्मल तरीके से ही बात की जाएगी, उसमें भी जो है वो खुशकी और रूखापन वगैरह को इंड्यूस करने की जरूरत नहीं है। यही बात जो है वो घर के बड़ों के साथ भी आ जाती है, कि घर के बड़ों में भी जो है ना वो यानी समझा जाएगा कि मसलहतन कि भाई पर्दा तो करना है, ये नहीं कि जी वो घर के बड़े हैं तो जी हम निकाब करेंगे तो वो नाराज हो जाएंगे, नहीं भाई, वो एक अलग चीज है, यहाँ पे बातचीत की बात हो रही है, ठीक है, वहां पे चेहरा खोल देने का की बात नहीं हो रही, ठीक है। तो नाराज तो आजकल तो माशाल्लाह यानी कोई कोई लिमिट ही नहीं है ना नाराजगी की, तो भाई अगर आज के हिसाब से चलेंगे तो फिर तो सब कुछ ही खत्म करना पड़ेगा, ठीक है, उनके साथ जब तक बैठ के चाय के 2 कप जो है वो हंसी मजाक के साथ नहीं होंगे तो उस वक्त तक तो वो आपसे राजी नहीं होंगे, ठीक है। तो अब ये तो नहीं, सारी चीजें तो रिलैक्स नहीं की जा सकती, तो बस इतना ही है कि उनके साथ जो है वो नॉर्मल लहजे में बात करें करें और कोई सख्ती और ये करने की जरूरत नहीं है। अलबत्ता अगर वो ऐसे हैं तो घर के बड़े या बुजुर्ग, लेकिन आपको पता है कि जी उनके चाल चलन अच्छा नहीं है, ऐसे भी तो है ना अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, चाल चलन अच्छा नहीं होता और वो जो है वो यानी खूब जो है वो यानी मजे की जिंदगी गुजारते हैं, या ये कि ऑनलाइन जो है वो उनकी हरकतें अच्छी नहीं है, ठीक है, तो अब ऐसे शख्स से जो है ना वो एहतियात करनी चाहिए। एक दफा बात कर दी, जरूरत के तहत सलाम कर लिया, आप खैरियत से हैं, ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी, बस उसके बाद दोबारा उनसे उनके करीब जाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से अपनी जजमेंट अख्तियार कर इस्तेमाल करके एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि फिर वो तो फी कुलूबे मरदों वाली क्राइटेरिया के ऊपर फिर वो पूरा उतर गए ना। ठीक है, और कोई सवाल? चलो बेहतर, अस्सलाम वालेकुम।